श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर बिमल यस जो दायक फल चार बो दीन तनु जान के सुमरेउ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरेउ कलेश विकार तुम रिद्धि सिद्धि के दाता स्वामी शिव शंकर का प्यारा गणपति को नमनु हमारा गणपति को नमनु हमारा तुम रिद्धि सिद्धि के दाता स्वामी शिव शंकर का प्यारा गणपति को नमनु हमारा गणपति को नमनु हमारा शिव शंकर है पिता तुम्हारे पार्वती है माता शिव शंकर है We'll be right back. गणपति को नमन हमारा, गणपति को नमन हमारा।
प्रिय भक्तजनों, ये मैं कृपाल सिंह मीना सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के माध्यम से हम आपको राधे श्याम रामायण के माध्यम से राम वनवास का पावन प्रसंग की ओर ले चलते हैं। तो आइए श्रवण करें।
एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा,
अचानक ही दर्पण में अपना मुख देखते हैं और देखते देखते महाराज की दृष्टि कानों के समीप सफेद बालों पर जाती है, तो महाराज दशरथ चकित हो जाते हैं। तभी महाराज कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर क्या बोले हैं बंधुओं?
बोले है देव, उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का,
मुझसे कह रही है कि दशरथ, ये मोह माया छोड़, अब तो तेरा चौथापन आ गया और ये राज्यकाज का बाहर छोड़, वन में प्रस्थान कर और उस सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन कर। हाँ हाँ स्वामी, बेटा राम भी अब राज्य भली भांति से चला सकता है, मेरा यही प्रस्ताव है। देखिए आपके श्री चरणों में है, क्या आज्ञा है इस दास के लिए? तो गुरु वशिष्ठ जी बोले हैं क्या?
गुरु वशिष्ठ बोले, नृपति हे ये उचित विचार, गुरु वशिष्ठ बोले नृपति हे ये उचित
बंधुओं, गुरुदेव की स्वीकृति मिल जाने के बाद राज तिलक की तैयारियां होने लगती हैं। सारा नगर सजाया जा रहा है। सारे अवध प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा राम का राज्याभिषेक देखने को ललायित हैं। और उधर देवताओं के आग्रह पर और अनुरोध पर माँ सरस्वती मंथरा की मति फेर देती है। तो साथियों, अब मंथरा मंथरा नहीं रही और अपनी करतूतों से क्या रंग लाती है भैया।
देखू मंथुरा नगर बनावा, देखू मंथुरा नगर बनावा, देख मंथुरा नगर बनावा, देखू मंथुरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाजी बनावा, मंजुल मंगल बाजी बनावा। भरत मातु पही गई बिलखानी, भरत मातु पही गई बिलखानी, कायन मानी अधिक हसी रानी,
मेरे बंधु। तभी मंत्रा सीधी के महल में जाती है और कहती है, हे महारानी, क्या आपको पता नहीं कि महाराज दशरथ और बड़ी रानी कौशल्या ने कितनी चतुराई और चालाकी के साथ अपने बेटा राम को राज्य तिलक करवा रही हैं। और हाँ हाँ महारानी जी, मैं सत्य कह रही हूँ, और आपके बेटा भरत को तो बुलवाया भी नहीं जा रहा है। और सुनो,
खुल गए भागी को सल्या के हे दया उसी पर विधना की, भूल गए भागी को सल्या के हे दया उसी पर विधना की, रानी किसी और नींद में है, रानी किसी और तेरी काटे जाते हैं, हकदार राम को माना है, हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं,
है महारानी जी। आप महाराज की चालाकी तो देखो, एक बेटा को तो परदेश भेज दिया और एक बेटा को राज्य का हकदार बना रहे हैं। और हाँ, देश देश को नोते दिए जा रहे हैं और भरत लाल के पास कोई सूचना भी नहीं भेज रहे हैं। महाराज, हाँ हाँ महारानी जी, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मगर मेरे भरत लाल के साथ कोई कपट करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और क्या बोली है,
यदि तुम इस रण में हार गई, यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रणवासों में, रखेगी तुमको कौशल्या।
महारानी जी, अगर आप इस वक्त चूक गई तो भरतलाल राम का दास होगा और आप कौशल्या की दासी। बंधुओं, फिर क्या था, महारानी केकई मंथरा की बातों को ठीक समझने लगी और कहने लगी, हे दासी मंथरा, तूने मुझे ठीक समय पर जगाया। अरे मैं तो सो रही थी, पर मंथरा मुझे ऐसी उपाय बता मेरी प्यारी दासी कि राम की जगह बेटा भरत राजा हो जाए। बंधुओं, तभी मंथरा केकई को अपने दो वरदानों की याद दिलाती है जो महाराज दशरथ पर थाती बतौर रखे हुए थे। और क्या हुआ,
होगा ये याद तुम्हें रानी, राजा पर दो बर थाती हैं। होगा ये तुमको याद दासी, राजा पर दो बर थाती हैं। ये घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी हैं। बस घर का तीर जीतने में बस दो ही तीर ही काफी हैं।
मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। उसी समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए।
के कहने लगी, पर मांगू क्या दासी। मंथरा कहने लगी, महारानी जी सुनिए क्या।
कहना दो वचन मांगती हूँ राजा श्री भरत लाल जी हूँ। कहना दो वचन मांगती हूँ राजा श्री भरत लाल जी। रामचंद्र चौदह वर्षों को रामचंद्र तपजीवन कर वनवासी हो।
मित्रों, राम को 14 वर्षों का वनवास सुनकर केकई घबरा सी जाती है। नहीं मंथरा, ऐसा ना कर, और कुछ मांग लूंगी। नहीं महारानी जी, ऐसी भूल ना करना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। भरतलाल तभी राजा होंगे जब राम अवश्य बाहर होगा, बोली केकई। अब क्या करूं दासी। तभी मंथरा कहती है, महारानी आप कोप भवन में जाएं और अपना पूरा त्रियाचरित्र बिखेरें। जो बंधुओं, किस प्रकार से केकई अपना त्रियाचरित्र किस प्रकार से बिखेर रही हैं।
रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनुसन पाटी ले पड़ी दिया अन्न जलताग।
बंधु, इधर क्या हुआ।
कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। कर दिए वस्त्र
किसी दूत के द्वारा महाराज दशरथ को पता चलता है कि महारानी कैकेयी कोप भवन में है, तो महाराज घबरा से जाते हैं और तुरंत ही कोप गृह में जाकर महाराज दशरथ कहने लगे, अरे कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मंगल समय है, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? और क्या तुम भूल गई तुम्हारे बेटा राम को राज्याभिषेक प्रातः होने जा रहा है? जरा देखो तो सही कैकेयी, सारी की सारी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। और हाँ कैकेयी, इस उपलब्ध में अगर आप कुछ मांगना भी चाहोगी तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। तभी कैकेयी क्या कहने लगी,
मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में तो रखते स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में
दशरथ कहते हैं, प्रिये, अरे इतनी छोटी सी मांग के लिए इतनी लंबी भूमिका की क्या जरूरत थी? आप जो मांगना चाहते हैं निसंकोच मांगो, तभी बंधु हो। कैकेयी तमक कर उठती हैं और कहती हैं, महाराज मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं तो अपने दो वरदान मांग रही हूँ। और कान खोलकर सुनिए, ये वरदान तभी मांगूंगी जब आप अपने बेटा राम की सौगंध खा लेंगे। अरे कैकेयी, इसमें सौगंध की क्या बात है? मित्रों, राजहट, बालहट और त्रियाहट, इन हटों से तो भगवान ही बचाए। इधर में महाराज दशरथ को राम की शपथ लेते हैं और इधर कैकेयी अपने वचनों को महाराज के सामने किस प्रकार से रख रही है।
सुनहु प्राणी प्रिय भावत जी का,
महाराज पहले वरदान में राम के बदले अपने बेटा भरत लाल को राज तिलक मांगती हूँ, और ध्यान से सुनिएगा महाराज, मैं अपने दूसरे वर के रूप में आपके बेटा राम को 14 वर्षों का वनवास चाहती हूँ। बंधुओं, कैकेयी के दूसरे वरदान में महाराज चकित हो जाते हैं, कहते हैं, कैकेयी बेटा राम पर इतना बड़ा अन्याय न कर, क्या बिगाड़ा है तेरा बेटा राम ने जो तू वनवास दे रही है? फिर कैकेयी, मेरे लिए तो राम और भरत एक ही समान हैं। और क्या कहने लगे, सुन,
सब पुत्र पिता को हैं समान, हैं पुत्र पिता को सब समान, तू ही ये बात जानती है। सभी मुझसे
कैकेयी, राम के बदले भरत राजा हो तो मुझे अपार खुशी होगी। मगर बेटा राम पर इतना अन्याय न कर। कैकेयी, मेरा बेटा तो दया का पात्र है, अति भोला भाला है, सरल स्वभाव का है। तेरी आज्ञा है से वो बन भी चला जाएगा, मगर कैकेयी मैं बेटा राम के बिन जीवित नहीं रहूंगा। और क्या
रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है,
कई भले ही मेरा राम तपसी भेष में रहे, मगर मेरे सामने रहे, अयोध्या में रहे। के कई आज मैं तेरे चरणों को पकड़ इतनी सी भीख मांगता हूँ कि बेटा राम को मुझसे एक पल के लिए भी अलग ना कर। और क्या बोले हैं,
कर दूंगा अभी से कुभरत का तू मुझको मजबूर न कर, कर दूंगा अभी से कुभरत का मुझको मजबूर न कर। राम है मेरा प्राण प्यारा, राम को मुझसे दूर न कर, कर दूंगा अभिषेक भरत का तू मुझको मजबूर न कर। अभिषेक भरत का तू मुझको मजबूर न कर।
बंधु, इधर के कई महाराज को ललकारती हुई कहती है, राजन मैं आपसे कोई कर्जा नहीं ले रही हूँ, मैं तो अपने दो वरदान मांग रही हूँ, और केवल दो वरदान के लिए आप नारियों की तरह रोने लगे। जरा ध्यान करें महाराज, आपके वंश में तो बड़े बड़े दानी और सत्यवादी राजा हुए, जैसे हरिश्चंद्र, सिबी, दधीति, जिन्होंने के सत्य धर्म के नाम पर अपने आप को न्योछावर कर दिया, और रघुकुल की कीर्ति पताका को बढ़ाया, और आप हैं जो केवल दो वरदान के लिए घबरा गए। तभी मित्रों महाराज दशरथ केकई को फटकार देते हैं, कहते हैं केकई,
अच्छा जो मोहना है होगा उसकी न मुझे चिंता अब है,
बंधुओं। महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई और धरती पर गिर पड़े, मछली की तरह तड़प रहे हैं। जब जब भी महाराज को होश आता तभी तभी राम के उठते हैं। इधर केकई तुरंत ही दूत द्वारा राम को अपने पास बुलवाती हैं और कहती हैं, क्या
सुने हूँ राम सब कारण ए हो, सुने हूँ राम सब कारण एहु, आहा राजई तुम पर बहुत स्नेहु,
के बोली हे राम मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पिताश्री पर मेरे दो वरदान थाती बतौर रखे हुए थे, और समय पाकर उन वरदानों को मैंने मांग लिया। प्रभु बोले, क्या मांगा है माँ? सुनो राम, पहले बार में आपकी जगह बेटा भरत को राज, और दूसरे बार में आपको 14 वर्षों का वनवास। यही है कारण कि आपके पिताश्री व्याकुल अवस्था में धरती पर पड़े हुए हैं। साथियों, राम मुस्कुराते जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं अपनी मैया से,
बड़े भागी बेटा तो वह पितु माता
बार बार सोचता था कि जीवन का कुछ समय वनों में मिले, जिससे कि मैं वनों में रहने वाले दुखी गरीब असहायों की सेवा कर सकूं। और मैया, भरत का अभिषेक होना तो मेरे लिए बहुत ही अपार खुशी का विषय है माँ, पर मुझे ये समय समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी बात पर हमारे पिताश्री को इतना बड़ा दुख हुआ, और क्या बोले हैं राम। कभी कभी मुझसे तो अपराध नहीं हुआ, और मैया जिसके कारण हमारे पिताश्री अति व्याकुल हैं, और क्या
इस प्रकार कहते हुए बड़े पिता की ओर। तभी केकई ने कहा ठेरो करो ना शोर।
तभी केकई ने कहा राम तुम जितना भी यह रुकोगे तुम्हारे पिता श्री को उतना ही कष्ट अधिक होगा, इसलिए मेरी आज्ञा है राम तुम शीघ्र वन के लिए प्रस्थान करो।
तभी बंधु श्री राम पिता को प्रणाम कर माँ कौशल्या के पास आते हैं और माँ से भी वन गमन की आज्ञा लेते हैं, तो माँ सीता समेत वन जाने के लिए आज्ञा देती है। किस प्रकार है
बरसा का गंगा का पानी ठेरा न कभी ठेराए हैं, बरसा का गंगा का पानी ठेरा न कभी ठेराए हैं, सीता भी वन में जाने का सीता भी
क्योंकि सीता माँ से पहले ही आज्ञा ले चुकी थी, तभी माँ सीता के सहित बन जाने की आज्ञा दी है। और इधर भैया लक्ष्मण भी अपने बाल सखाओं द्वारा विदित होता है कि अरे लक्ष्मण तुम यहाँ खेल खेल रहे हो और तुम्हारे भाई श्री राम वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तभी लक्ष्मण दौड़े दौड़े आए और क्या कहने लगे अपने भैया से और अपनी माँ के पास पहुँचते हैं और क्या बोले माँ सुमित्रा से,
बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय।
क्या कहने लगे मैया से,
वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिन्हें गद्दी का है होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं।
माँ अगर भैया राम बन जाते हैं तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, इसलिए मुझे भी आप आज्ञा दें कि भैया राम के साथ बन जाऊँ, उनकी सेवा करूँ। मित्रों सब कुछ समझाने के बाद माँ सुमित्रा कहती है बेटा
ए ललन में करूँ इजाजत तुझे फर्जी अपना वहाँ पर बहाना ललन, और जहाँ पर पसीना गिरे राम का
जाओ बेटा लक्ष्मण अपने भैया की सेवा तनी भी कमी नहीं लाना, और आज से राम तुम्हारे पिता के समान है और दुल्हन सीता माँ के समान, दोनों को ऐसी सेवा करना कि बेटा मस्तक गर्व से ऊंचा कर देना मेरा। धन्य है माँ सुमित्रा को जो अपने बेटे को राम की सेवा में न्योछावर कर रही हैं। और क्या होता है
देखो वह भी है एक मात अपने को राज दिलाती है, देखो वह भी है एक मात अपने को राज दिलाती है, सोते ले लड़कों से लड़कर सोते ले लड़कों को लड़कर घर से वन में भिजवाती है।
कुमार माँ से विदा लेकर और उर्मिला को समझा कर दौड़े दौड़े श्री राम के पास आकर श्री चरणों में गिर जाते हैं और क्या बोले हैं।
बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों, या सात गवन है लक्ष्मण का या प्राण सजन है लक्ष्मण का।
बंधु प्रभु बार बार भैया लक्ष्मण को समझा रहे हैं, अगरे पगले जब से सीता के सहित बन जा रहा हूं तो यहां माता पिता की सेवा कौन करेगा, भैया भरत भी यहां पर नहीं है, हमारे माता पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ही रहो लक्ष्मण, इन सब की देखभाल आपको करना है। और क्या
मैं बन जाऊं तुम्हें ले सा
लक्ष्मण जरा सोचो तो, अगर आप भी मेरे साथ वन में जाते हो तो ये अवधपुर अनाथ हो जाएगा, भैया आप यहीं रहो और माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, भैया इन पुरवासियों की ओर तो देखो इनका क्या होगा। और सुने
मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूं, आजन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिन और माता जो कुछ है जनक दुलारी है।
साथियों भैया लक्ष्मण के प्रेम के आगे प्रभु विवश हो गए और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों राम लक्ष्मण और माँ जानकी तीनों चले कहाँ,
अब चल कर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहाँ पर रघुकुल राव उदास।
एक की जगह तीनों को जाते देख महाराज दशरथ घबरा जाते हैं और हे मेरे जैसा कठोर पिता इस पृथ्वी पर कोई ना होगा, और राम तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी बेटा भी इस संसार में दूसरा नहीं है राम, और यह कहते हुए मूर्छित हो जाते हैं। और पल भर की मूर्छा के बाद होश आता तो बेटा राम को हृदय से लगा लिया और सांवरी सांवरी सूरत को निहार रहे हैं। दोस्तों ये सब रानी केकई की करतूते हैं। और क्या हुआ, महाराज को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए केकई ने तुरंत बलकल वस्त्र खड़ाऊ श्री राम को देती है और श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण प्रिया सीता के साथ वन के लिए प्रस्थान करते हैं। और इधर देखो क्या होता है,
मचाय अयोध्या में तभी इसी प्रकार को राम, वहीं अयोध्या रहेगी जहां रहेंगे राम।
बंधु श्री राम लक्ष्मण सीता को वियोग प्रवासी सहन नहीं कर पा रहे थे, बूढ़े बच्चे यहाँ तक कि पशु पक्षी भी चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, हे राम वन को ना जाओ, हम तुम्हारे बिना पल भर भी नहीं रह पाएंगे, हमें छोड़ो राम, हमें ना छोड़ो, आप तो हमारे प्राणों को भी प्राण हो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो और वन में ना जाओ, ना जाओ वन में प्रभु, ना जाओ। और क्या बोलें,
राम ना जाओ अवध छोड़ के, विनती करें हम हाथ जोड़ के, राम ना जाओ अवध छोड़ के, विनती करें हम हाथ जोड़ के, मत जाओ वन राम हमारी अरज सुनो, मत जाओ वन राम हमारी अरज सुनो। राम न जाओ अवध छोड़ के, विनती करें हम हाथ जोड़ के, मत जाओ वन राम हमारी अरज सुनो, मत जाओ वन राम हमारी अरज सुनो। बिना तुम्हारे रह नहीं पाए या फिर साथ तुम्हारे जाए, बिना तुम्हारे के सुख दाम हमारी अरज सुनो, मत जाओ वन राम हमारी अरज सुनो। तुम्हें हमारे हो भी तुमाता, तुम्हें हमारे हो भी तुमाता, बिना तुम्हारे अवध अनाथा, लौट चलो रघुनाथ हमारी अरज सुनो, लौट चलो रघुनाथ हमारी अरज सुनो। राम न जाओ अवध छोड़ के, राम न जाओ अवध छोड़ के, विनती करें हम हाथ जोड़ के, विनती करें हम हाथ जोड़ के, मत जाओ वन राम हमारी अरज सुनो, मत जाओ वन राम हमारी अरज सुनो।
पुरवासियों का आघात प्रेम देखकर प्रभु बोले, भगवान श्री राम समझाते हैं पुरवासियों को और समझने के लिए कोई तैयार नहीं, कहते प्रभु जहाँ धूप वहीं छाया रहेगी, हम आपके बिना पल भर नहीं रहेंगे और हमने निश्चय कर लिया है कि हम आपके साथ बन चलेंगे। बंधु श्री सीताराम भैया लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठे हैं और त्यों ही सखा सुमंत रथ को आगे बढ़ाते हैं तो सारी प्रजा रथ के पीछे पीछे चलते हैं। और क्या हुआ,
यूं ही चलते हुआ जब हुआ निशा कायाम, रामा हुआ निशा कायाम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा परवेशाम,
क्रम से शाम होती हैं, प्रभु तमसा नदी पर विश्राम करते हैं, सभी थके हारे प्रजाजन भी सो जाते हैं और प्रभु के संकेत के अनुसार सुमंत रथ आगे बढ़ा देता है, रथ निकल जाता है और प्रभात होते ही सारे प्रवासी उठते हैं तो प्रभु को नहीं पाते हैं। इस ओर प्रभु राम का इसी प्रकार से प्रभु राम का वनवास होता है। धन्यवाद। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण कुमार की जय।
भीड़ लगी है द्वार तुम्हारे, भीड़ जगा दो।